أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لأهله الصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها. تمام دوستوں کو، برادران و خواہران کو درس قرآن میں خوش آمدید. آج انشاءاللہ استقبال ماہ مبارک رمضان کی دعا ہم پڑھیں گے انشاءاللہ مل کے. یہ دعا امام سجاد علیہ السلام کی معتبر دعاؤں میں سے ہے. صحیفہ کاملہ میں یہ دعا موجود ہے اور یہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں صحیفہ کاملہ میں، تو یہ صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 44 ہے. 44 نمبر دعا ہے کہ جس کو استقبال ماہ رمضان کی دعا کہا جاتا ہے. انشاءاللہ آغاز کریں گے ہم دعا کا. اس سے پہلے ایک دو نکات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. عموماً دعاؤں کا جو سلسلہ ہے اس میں ایک چیز جو ہے، جیسا کہ پہلے بھی شاید اس بارے میں آپ سے ایک آدھ بات میں نے کی ہو، کہ دعاؤں کے ساتھ انسان کا جو تعلق ہے، یقیناً دعا کو مومن کا ہتھیار کہا گیا ہے، اب دعا سلاح المؤمن، تو دعا ہتھیار ہے مومن کا. اور دعا کا جو فلسفہ ہے کہ خود دعا ایک مکمل نصاب ہے زندگی کا. بالخصوص جو معصومین کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں اگر ہم غور کریں، جیسے خود امام سجاد علیہ السلام کی دعاؤں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ امام نے دعا کے انداز میں، دعائیہ انداز میں، بہت سارے مطالب، بہت سارے پیغامات کہ جو یقیناً حقیقی دین کے پیغامات ہیں، وہ امام کی طرف سے ہم تک منتقل ہوئے ہیں. اس دعا کے اندر بھی، یہ دعا ماہ رمضان کی جو دعا ہے، اس دعا میں بھی اگر توجہ کی جائے اور ہم اس کے مطالب کی طرف اگر توجہ کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس دعا میں بہت سارے ایسے کام امام نے دعائیہ انداز میں بیان کیے ہوئے ہیں کہ جو اس ماہ مبارک رمضان میں ایک روزہ دار کو انجام دینے چاہیے. تو آغاز کرتے ہیں دعا کا. انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اس کے مطالب کی طرف بھی ہم متوجہ ہوں گے اور اس دعا کے مفہوم کو انشاءاللہ محفوظ کریں گے، ساتھ ساتھ متوجہ بھی رہیں گے. ایڈمن میں اگر اویس بھائی موجود ہیں تو وہ ذرا مجھے بتا دیں گے فیس بک پہ لائیو شروع ہوا ہے یا نہیں ہوا. پیج پہ لائیو نہیں ہوا شروع؟ اچھا، تو اس کو آپ پیج پہ دیکھیے گا، اس کو اگر پوسٹ کر سکتے ہیں تو آپ کر دیجیے گا. ٹھیک، معاف کیجیے گا. دعا نمبر 44 استقبال ماہ رمضان کی دعا، میں اس کا ترجمہ آپ کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ توجہ رکھیے گا. بنام خدا رحمان و رحیم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اپنی حمد و صفات کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور ہمیں حمد گزاروں میں سے قرار دیا تاکہ ہم اس کے احسانات پر شکر کرنے والوں میں محسوب ہوں اور ہمیں इस शुक्र के बदले में होकारों का अजर दे। उस अल्लाह के लिए हम्द व सताइश है जिसने हमें अपना दीन अता किया और अपनी मिल्लत में से करार देकर इम्तियाज बख्शा और अपने लुत्फ व एहसान की राहों पर चलाया, ताकि हम उसके फजल व करम से उन रास्तों पर चलकर उसकी खुशनूदी तक पहुँचें। ऐसी हम जिसे वो कबूल फरमाए और जिसकी वजह से वो हमसे राजी हो जाए। माइक ज़रा ऑफ कीजिएगा, जिन लोगों के माइक ऑन हैं। जी शुक्रिया। ऐसी हम जिसे वो कबूल फरमाए और जिससे वो हमसे राजी हो जाए। तमाम तारीफ उस अल्लाह के लिए जिसने अपने लुत्फ व एहसान के रास्तों में से एक रास्ता अपने महीने को करार दिया, यानी रमज़ान का महीना, सियाम का महीना, इस्लाम का महीना, पाकीज़गी का महीना, तस्फ़िये का महीना, इबादत व क़याम का महीना। अगर हम गौर करें तो इस महीने के लिए जो अल्फाज इमाम अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल किए कि रमज़ान का महीना, सियाम का महीना, रोज़े का महीना, रोज़ा रखने का महीना, इस्लाम का महीना, ये महीना इस्लाम का है, पाकीज़गी का महीना है, ख़ुद को पाकीज़ा रखने का, ख़ुद को पाकीज़ा करने का महीना है, तस्फ़िये का महीना है। हमने अगर कुछ बदला देना है, जैसे इंसान होता है ना कि बिलख़ुसूस अगर हमने कोई नाफरमानी की है परवरदिगार की, तो तस्फ़िया करना है। इस वक्त इस मसले को हल करें, अपनी इताअत के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करवाएं। इबादत व क़याम का महीना है, ये इबादत का महीना है। क़याम यानी रातों को इबादत करने का, क़याम का अमूमन मफहूम रात की इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके अलावा अगर हम कहें क़याम, तो कहें इंसान अपने नफ्स के मुकाबले में क़याम करे, इंसान अपने नफ्सानी ख्वाहिशात के सामने क़याम करे, उनके मुकाबले में क़याम करे। आगे जारी रखते हैं। वो महीना जिसमें क़ुरान नाजिल हुआ जो लोगों के लिए रहनुमा है, ये क़ुरान रहनुमा है लोगों के लिए, लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में जब क़ुरान मजीद की तिलावत की जाए तो तिलावत करते वक़्त इस बात का पूरा ख्याल रखा जाए कि ये क़ुरान रहनुमा है, ये रहनुमाई करता है। खुशनसीब होंगे वो लोग, वो अफराद के जो माह मुबारक रमज़ान में क़ुरान मजीद से रहनुमाई हासिल करेंगे और ऐसी तिलावत करेंगे कि जिस तिलावत के ज़रिए वो क़ुरान से रहनुमाई हासिल करें, क़ुरान को अपना रहनुमा बना सकें। हिदायत और हक़ व बातिल के इम्तियाज़ की रोशन सदाकतें रखता है, यानी इस क़ुरान में हिदायत भी है और हक़ व बातिल के दरमियान जो तफरीक की जा सकती है उसकी रोशन दलीलें और सदाकतें भी हैं। चनांचे तमाम महीनों पर इसकी फजीलत व बरतरी को आशकारा किया, उन फरावा इज्जतों और नुमाया फजीलतों की वजह से जो इसके लिए करार दी और इसकी अजमत के इजहार के लिए, यानी इस माह मुबारक रमज़ान के अजमत को ज़ाहिर करने के लिए अल्लाह ने क्या किया, जो चीज़ें दूसरे महीनों में जायज़ थीं इसमें हराम करार दी। यानी ऐसे काम के जो आम महीनों में जायज़ हैं, हलाल हैं, जैसे खाना पीना हलाल है, लेकिन माह मुबारक रमज़ान की अजमत फजीलत इतनी है کہ اس کے دن میں جب انسان روزے سے ہو تو وہی کھانا اور پینا جو عام اور عام مہینوں کے دنوں میں حلال ہے، اس کے دنوں میں وہ شخص کے جس کے اوپر روزہ فرض ہے اس کے لیے وہ حرام ہو جاتی ہیں. اور اس کے احترام کے پیش نظر کھانے پینے کی چیزوں سے منع کر دیا اور ایک واضح زمانہ اس کے لیے معین کر دیا. یعنی معین ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک روزہ رکھے. خدائے بزرگ و برتر یہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے معینہ وقت سے آگے بڑھا جائے، اور نہ یہ قبول کرتا ہے کہ اسے مؤخر کر دیا جائے. یعنی اللہ نے روزے کے آغاز اور اختتام کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے نہ اس سے پہل کر سکتے ہیں نہ اس پہ تاخیر کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سحری کا آخری وقت مقرر ہے ہم اس کے بعد بھی کچھ عرصہ، مثلا گھنٹہ، 10 منٹ، 5، حتیٰ کہ 1 منٹ بھی جب سحری کا وقت ختم ہو جائے تو پھر اس سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اسی طرح افطار میں بھی اسے ایسا ہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان آدھی رات تک روزہ رکھ لے، روزے کو آگے دوام دے، نہ کھائے پیے. نہیں، جو اس کا مقررہ وقت ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. پھر یہ کہ یعنی اسی مہینے کو مزید عزت و فضیلت دینے کے لیے اللہ کی طرف سے جو چیزیں ہوں گی اس کو امام بیان کر رہے ہیں اپنی دعا میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر یہ کہ اس کی راتوں میں سے ایک رات کو 1000 مہینوں کی راتوں پر فضیلت دی اور اس کا نام شب قدر رکھا. اس رات میں فرشتے اور روح القدس ہر اس امر کے ساتھ جو اس کا قطعی فیصلہ ہوتا ہے اس کے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل ہوتے ہیں. وہ رات سراسر سلامتی ہے اور جس کی برکت طلوع فجر تک دائم و برقرار ہے. یعنی شب قدر کے بارے میں بات کی. اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور ہمیں ہدایت فرما کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے اجتناب کریں. اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضا کو نافرمانیوں سے روکنے اور ان کاموں میں مصروف رکھنے سے جو تیری خوشنودی کا باعث ہوں ہماری اعانت فرما. یوں تو ایک دعائیہ جملہ ہے، لیکن اس کا میں نے عرض کیا پہلے بھی، دعا انسان کو ذمہ دار بناتی ہے. جیسے ہم کوئی دعا کرتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری کچھ عملی ذمہ داری بنتی ہے. جیسے اگر اس دعا کے جملے پہ ہم توجہ کریں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے کی عزت و حرمت کو بلند جانے. یعنی امام نے کہا نا، خدا ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس مہینے کے فضل و شرف کو پہچانیں، اس کی عزت و حرمت کو بلند جانیں، اور اس میں ان چیزوں سے جن سے تو نے منع کیا ہے. یعنی عزت و شرف کو پہچاننے کے لیے، اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں سے جن سے اللہ نے منع کیا ہے اجتناب کریں. اور اسی طرح اس کے روزے رکھنے میں ہمارے اعضا کو نافرمانیوں سے روکنے، روزے رکھنے کے لیے اعضا کو نافرمانیوں سے روکنے کے لیے اور اعضا کو اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف رکھنے کے لیے کہ جو اللہ کی خوشنودی کا باعث ہوں، خدا ہماری مدد فرما. اب یہ تین کام اگر ہم اس کے اندر عملی طور پر داخل ہوں گے، خود کو اللہ کی نافرمانی سے محفوظ رکھنے کی کوشش کریں گے، اسی طرح خدا کی خوشنودی کے उसूल के लिए जो काम करने होते हैं उन कामों की तरफ अगर जाएंगे, तब ये इस दुआ का जुमला जो है तब हमारे हक़ में कबूल होगा, अगर हम ख़ुद अपनी तरफ से अमली जो ज़िम्मेदारी है उसको पूरा करेंगे तब। ताकि क्योंकि हमारी मदद फरमा कि हम इसके इसमें तेरी नाफरमानी और इन चीज़ों से बचें, क्या होगा ताकि इसके बाद भी इमाम ने मज़ीद जुज़ियात में चीज़ें बताई हैं कि जिनसे इज्तनाब करना है दुआए जुमला, लेकिन अमली ज़िम्मेदारी इसमें मुय्यन हो जाती है। ताकि हम ना बेहुदा बातों की तरफ कान लगाएं, ना फजूल चीज़ों की तरफ बेमहाबा निगाह उठाएं, ना हराम की तरफ हाथ बढ़ाएं, और ना अम्र ममनू की तरफ पेशकदमी करें। देखिए क्या क्या कह रहा, एक बेहुदा बातों की तरफ कान लगाएं, उससे खुद को बचाना है। दूसरा, वो फजूल चीज़ों की तरफ बेमहाबा निगाह उठाएं, अपनी निगाह की हिफाजत करनी है। आजकल तो ये सोशल मीडिया का दौर है, इंसान के हाथ में सब कुछ मौजूद है, जो देखना चाहे उसकी निगाह जो है उसको कंट्रोल करना एक जिहाद है ये। तो बस निगाह की हिफाजत। उसके बाद हराम की तरफ हाथ ना बढ़ाएं, यानी ख़ुद को हराम से महफूज रखना। फिर है अम्र ममनू की तरफ पेशकदमी ना करें, यानी वो काम के जिससे अल्लाह ने रोका हुआ है उसकी तरफ जाएं मत। और अगला क्या कहा, न तेरी हलाल की हुई चीज़ों के अलावा किसी चीज़ को हमारे शिकम कबूल करें, यानी हम तेरी हलाल की हुई चीज़ों के अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल ना करें, और न तेरी बयान की हुई बातों के सिवा हमारी ज़ुबानें गोया हों, यानी हमारी ज़ुबानों पर माह मुबारक रमज़ान में फजूल बातें ना हों, बल्कि वही बातें हों कि जो अल्लाह की तरफ से जो जिस पे खुदा राज़ी है। सिर्फ उन चीज़ों के बजा लाने का बार उठाएं जो तेरे सवाब से करीब करें, यानी हम वे ऐसे काम करें कि जिससे हम अल्लाह के सवाब के करीब हो जाएं, और सिर्फ़ उन कामों को अंजाम दें जो तेरे अजाब से बचा ले जाएं। माह मुबारक रमज़ान के दिन और रात में अपने कामों को इस तरह से मैनेज करें कि हम वो काम अंजाम दें कि जिससे हमें अजाब खुदा से नजात मिले। अच्छा, ये सारे काम हम करें, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है जिसको इमाम ने इस जुमले के अंदर फरमाया है, फिर इन तमाम आमाल को रियाकारों की रियाकारी और शोहरत पसंदों की शोहरत पसंद, ऐसा ना हो कि हम अपनी शोहरत के लिए करें, ऐसा ना हो कि किसी को दिखाने के लिए करें। रमज़ान मुबारक में अगर किसी को अफ्तार करवाएं तो किसी को दिखाने के लिए नहीं, ना अपनी दौलत के इजहार के लिए। बाज़ औक़ात खुदा न खास्ता इस तरह की कैफियत भी बन जाती है कि इंसान अपनी अपने स्टेटस को इजहार के लिए फिर ऐसी दावत करेगा या दूसरों की मदद करेगा। लिहाजा इस तरफ भी मुतवज्जह रहने की ज़रूरत है कि ये सारे अमाल रियाकारी की बुनियाद पर नहीं होने चाहिए, शोहरत पसंदी के लिए नहीं होने चाहिए। शोहरत पसंदी से पाक कर दे, इस तरह के तेरे अलावा किसी को इसमें शरीक ना करें, और तेरे सिवा किसी से कोई मतलब ना रखें, खालिसतन खुदा के लिए अंजाम दिया जाए सब कुछ। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और हमें इसमें नमाज़हाए पंजगाना के औकात से उन हुदूद के साथ जो तूने मुअय्यन किए हैं, उन वाजिबात के साथ जो तूने आयत किए हैं, और उन आदाब के साथ जो तूने करार दिए हैं, और उन लम्हात के साथ जो तूने मुकर्रर किए हैं आगाह फरमा, और हमें इन नमाजों में उन लोगों के मर्तबे पर फायज कर जो इन नमाजों के दर्जात आलिया हासिल करने वाले हैं, यानी नमाज के वाजिबात, आदाब, उसके अव्वल वक्त का ख्याल, उसकी पाकीज़गी का ख्याल, लिबास का ख्याल। याद रखिएगा, इंसान ऐसे ही खड़ा हो जाए जिस लिबास में जो पहना हुआ था, और बाज़ औक़ात बहुत रफ़ लिबास में नमाज के लिए खड़ा हो जाए ना, एहतमाम होना चाहिए। कम से कम रमज़ान मुबारक में इस आदत का आगाज़ करें कि नमाज के लिए लिबास का एहतमाम करें, और जिस जगह नमाज पढ़ लें उसका एहतमाम करें, ताकि एक अच्छे अंदाज के साथ तमाम आदाब को बजा लाते हुए नमाज पढ़ी जाए। क्यों? ताकि हम उन लोगों के, खुदा हमें उन लोगों के मर्तबे पर फायज़ कर जो इन नमाज़ों के दर्जात आलिया हासिल करने वाले हैं, जो नमाज की अपर क्लास है, जो नमाज के मामले में खुदा के हाँ मुकर्रब तरीन अफराद हैं, ताकि उनके अंदर शामिल हो सकें। इनके वाजिबात की निगहदाश्त करने वाले और इन्हीं के इन्हें उनके औकात में उस तरीके पर जो तेरे अब्द खास और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू सुजूद और उनके तमाम फजीलत और बरतरी के पहलुओं में जारी किया था, कामिल और पूरी पाकिजगी और नुमाया व मुकम्मल खुशू व फरूतनी के साथ अदा करने वाले हैं। यानी नमाज के लिए पूरा एहतमाम किया जाए, बिलखसूस इस महीने में, इस माह मुबारक रमज़ान में। एक दफ़ा गौर करें हम लोग, हम अपनी नमाजों को किस अंदाज में अदा करते हैं, एक दफ़ा पूरी तवज्जो रखनी चाहिए। और नवाफिल जो हैं, नवाफिल से अपने वाजिब नमाजों को सजाना चाहिए। ए अल्लाह, हमें इस महीने में तौफीक दे, ए अल्लाह हमें इस महीने में तौफीक दे कि नेकी और एहसान के ज़रिए अजीज़ों के साथ सिला रहमी और इनाम और बख्शिश से हमसायों की खबरगिरी करें। यानी अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें, उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करें, उनके साथ अच्छा सलूक करें, और हमसायों के साथ क्या, हमसायों के साथ इनाम और बख्शिश के ज़रिए से, तोहफे तहाइफ के ज़रिए से, हाल अहवाल पूछने के ज़रिए से, अफ्तारी भेजने के ज़रिए से, मुख्तलिफ ज़राए। शहरों के अंदर तो ये आफत मैंने खुद देखी भी है, साथ रहते हैं और एक अरसे तक पता भी नहीं होता, एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं। लिहाजा इस माह मुबारक रमज़ान में हमसायों के साथ भी एक अच्छा सलूक हो, ताकि रमज़ान के बरकतों से इस्तफादा किया जा सके। और अपने अमवाल को मजलूमों से पाक व साफ करें और ज़कात देकर उन्हें पाकीज़ा व तैयब बना लें। यानी अपने माल को मजलूमों से पाक रखें। इसके बारे में अहादीस और रवायात में आता है कि अगर किसी के माल में खुम्स है और उसने अपना खुम्स अदा नहीं किया तो यकीनन उसका माल पाक नहीं है। इसी तरह जिसके लिए ज़कात वाजिब है, उसने अगर ज़कात अदा नहीं की तो उसका माल पाक नहीं है। इसी तरह उसके ऊपर अगर हुकूक हों, जैसे अहल वयाल के, वालिदैन के, रिश्तेदारों के हुकूक हों, यतीमों का हक़ हो उसके माल में, और वो अदा ना करे तो उसका माल पाक नहीं है। तो इस माह मुबारक रमज़ान में करने वाले कामों में से एक काम क्या है, अपने अमवाल को, चौथे इमाम के मुताबिक अपने अमवाल को मजलूमों से पाक व साफ़ करें, ज़कात अदा करके उन्हें पाकीज़ा व तैयब बना लें। ज़कात से मुराद फ़कत ये ज़कात जो ख़ास एक मकदार है वो मुराद नहीं है, अमूमन इस्लाम का जो पूरा निज़ाम इक़्तिसाद है उसके लिए ज़कात का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें खुम्स भी शामिल है, ज़कात भी शामिल है, सदक़ात शामिल है, कफ़ारा शामिल है। हो सकता है हम में से कोई ऐसा हो कि जिसका माह मुबारक रमज़ान के हवाले से कफ़ारे उसके बाकी हों और अब रमज़ान शुरू हो रहा है, लेकिन अपने कफ़ारजात को भी अदा किया जाए। और ये कि जो हमसे अलहदगी इख्तियार करे उसकी तरफ दस्त मसालहत बढ़ाएं। रमज़ान का तकाजा क्या है, जो आपसे अलहदा हो गया रिश्तेदारों में से उसकी तरफ आप कदम बढ़ाएं। जो हम पर जुल्म करे उससे इंसाफ करें, जो हमसे दुश्मनी करे उससे सुलह सफाई करें, सिवाय उसके कि जिससे तेरे लिए और तेरी खातिर दुश्मनी की गई, क्योंकि वो ऐसा दुश्मन है जिससे हम दोस्त नहीं रख सकते और ऐसे ग्रोह का फ़र्द है जिससे हम साफ नहीं हो सकते। सिवाय दुश्मन खुदा के सबको माफ़ किया जा सकता है, अल्लाह के दुश्मन के अलावा, क्योंकि ये ऐसा ग्रोह है कि जिसके साथ मुसालहत नहीं हो सकती। ये नहीं हो सकता कि हम रमज़ान है कि इसराइल को माफ़ कर दें कि जो तुमने फ़लस्तीनियों के साथ किया था उस पर हम तुम्हें माफ़ करते हैं। ये नहीं हो सकता कि हम शैतान बुजुर्ग अमरीका के लिए माफ़ी का ऐलान कर दें, नहीं, जो दुश्मन खुदा है उसके लिए माफ़ी या उसके साथ मुसालहत नहीं है। और हमें इस महीने में ऐसे पाक व पाकीज़ा आमाल के वसीले से तकर्रुब हासिल करने की तौफीक दे जिनके ज़रिए तू हमें गुनाहों से पाक कर दे। अल्लाह का तकर्रुब हासिल करने का इस माह मुबारक में तरीका क्या है कि हम पाकीज़ा आमाल जो है उसके वसीले से हम तकर्रुब हासिल कर सकते हैं, और उनके यानी ऐसे अमाल की जिनके ज़रिए हम गुनाहों से ख़ुद को बचाएं, खुद को दूर रखें, और क्या अज़ शर व बुराइयों के इर्तिकाब से बचा ले जाए। इस तरह से खुद की अपनी ज़िंदगी को मैनेज करें कि हम बुराइयों के इर्तिकाब से बच जाएं, यहाँ तक कि फरिश्ते तेरी बारगाह में जो आमालनामे पेश करें वो हमारी हर किस्म की इतातों और हर नौ की इबादत के मुकाबले में सुबक हों, यानी इतनी हम इबादत करें कि फरिश्तों की इबादतें हमारी इबादत से कम हो जाएं। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे इस महीने के हक को हुरमत और नेज़ उन लोगों का वास्ता देकर सवाल करता हूँ जिन्होंने इस महीने में शुरू से लेकर उसके ख़त्म होने तक तेरी इबादत की हो, वो मुकर्रब बारगाह फरिश्ता हो या नबी मुरसल हो या कोई मर्द साले और बरगुजीदा हो, कि तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और जिस इज्जत व करामत का तूने अपने दोस्तों से वादा किया है उसका हमें अहल बना, और जो इंतहाई इताअत करने वालों के लिए तूने अजर मुकर्रर किया है वो हमारे लिए भी मुकर्रर फरमा, और हमें अपनी रहमत से उन लोगों में शामिल कर जिन्होंने बुलंद तरीन मरतबे का इस्तेहकाक पैदा किया। यानी हम अपने रमज़ान के शब और रोज़ को ऐसे गुजारें जैसे नबी मुरसल अम्बिया गुजारते थे, जैसे सालेह और नेक अफराद गुजारते थे। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और हमें उस चीज़ से बचाए रख कि जो बचाए हमें इस चीज़ से बचाए रख कि हम तौहीद में कजंदेशी, तेरी तमजीद व बुजुर्गी में कोताही, हम तौहीद में कोई गलती कर जाएं, तेरी तारीफ़ करने में हमसे कोई कोताही हो जाए, तेरे दीन में शक, तेरे रास्ते में बेराह रवि और तेरी हुरमत से लापरवाही करें, और तेरे दुश्मन शैतान मर्दूद से फरेब खोर्दगी का शिकार बन जाए, इस चीज़ से खुदा हमें महफूज रख। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और उनके आले पाक पर, और जबकि इस महीने की रातों में हर रात में तेरे कुछ ऐसे बंदे होते हैं जिन्हें तेरा अफ़ो करम आज़ाद करता है या तेरी बख्शिश व दरगुजर उन्हें बख्श देती है, तो हमें भी उन्हीं बंदों में दाखिल कर और इस महीने के बेहतरीन अहल व असहाब में करार दे। यानी खुदाया, लेकिन रवायात में है कि तू इस माह मुबारक रमज़ान में हर रात में, हर दिन में, हर अफ्तारी के वक्त में तू बहुत से अपने बंदों पर अफ़ो दरगुजर करता है, उनके गुनाहों को माफ़ कर देता है, उन पर अपनी नज़र रहमत करता है। बस हमारी इल्तजा ये है कि हमें भी उन्हीं लोगों में शुमार कर कि जिनको तू अफ़ो दरगुजर करेगा, जिनको तू माफ़ कर रहा है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, और इसके चांद के घटने के साथ हमारे गुनाहों को भी महव कर दे, और जब इसके दिन ख़त्म होने पर आए तो हमारे गुनाहों का वबाल हमसे दूर कर दे, ताकि ये महीना इस तरह तमाम हो कि तू हमें ख़ताओं से पाक और गुनाहों से बरी कर चुका है। कितना खूबसूरत जुमला है अज़ीज़ान मोहतरम। एक नुकता अर्ज़ करूँगा, याद रखिएगा, हैरत होती है मकतब अहले बैत, मकतब तशय्यो, याद रखिएगा, मकतब अहले बैत के पास तौहीद के बारे में जो मवाद है, तौहीद के मौजू पर मकतब अहले बैत में जो कुछ बयान हुआ है, जो कुछ मासूमीन ने बयान किया है, आइम्मा ने बयान किया है, ऐसा बयान, इस तरह की बात दीगर मकातिब में नहीं है। लिहाजा तौहीद के मामले में मज़हब अहले बैत, मकतब अहले बैत के पैरोकारों को, मानने वालों को चाहिए कि वो तौहीद के मामले में ख़ुद को मज़ीद अपडेट करें, मज़ीद बेहतर करें हम अपने आप को। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत जुमला इमाम ने कहा कि खुदाया कि जिस तरह इस महीने का चांद घटता जाएगा, जैसे अभी एक था ना, अभी हिलाल है, ये बढ़ता जाएगा 15 तक, जो 15वीं रमज़ान तक, 15 के बाद उसने घटना शुरू करना है, यहाँ तक महीने के आखिर में वो हिलाल ख़त्म होता है और अगला चांद बनता है। तो ये जो चांद का घटना है, कम होना कम होता जाना, जिस तरह चांद घटता है कम होता है, खुदाया हमारे वजूद में से, हमारे कंधे में से, हमारी गर्दन में से, हमारी रूह में से तू गुनाहों के बोझ को भी, गुनाहों को भी इसी तरह मिटाता जा, यहाँ तक कि जब ये माह मुबारक रमज़ान ख़त्म हो जाए, जब ये इख्तिताम की तरफ जाए, तो हम भी ہم گناہوں کا وبال ہم سے دور ہو چکا ہو، ہم خطاؤں سے پاک ہو چکے ہوں، اور گناہوں کا وبال ہم سے اور گناہوں سے ہم بری ہو چکے ہوں۔ اذان محترم بہت بہترین موقع ہے، لیکن تھوڑی سی اس میں پلاننگ کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، اپنے آپ کو اگر ہم مینج کرنا چاہیں، اگر ہم اپنے آپ کو سنوارنا چاہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہیں، تو یہ ماہ مبارک بہترین مہینہ ہے اپنی اصلاح کرنے کے لیے۔ اے اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل رحمت نازل فرما، اور اس مہینے میں اگر ہم حق سے منہ موڑیں تو ہمیں سیدھے راستے پر لگا دے۔ خدا، اگر ہم غلطی کر بھی جائیں، اگر ہم سے غلطی ہو گئی، اگر ہم نے حق سے منہ موڑ لیا جانے میں، تو ہمیں واپس موڑ دے، تو ہمیں حق پر واپس لے آ۔ اور کجروی اختیار کرے تو ہماری اصلاح و درستگی فرما۔ اگر ہم راستہ بھٹک جائیں تو خدا تو ہماری اصلاح فرما، ہماری درستگی فرما۔ ہم مہمان ہیں خدا کے، یاد رکھیں مہمان کی عزت احترام میزبان کرتا ہے۔ طلب کر رہے ہیں خدا سے، دیکھیں کیا کس انداز میں، کتنی خوبصورتی کے ساتھ۔ اگر تیرا دشمن شیطان ہمارے گرد احاطہ کرے تو اس کے پنجے سے ہمیں چھڑا لے۔ خدایا، اگر ایسا ہو جائے کہ شیطان کا مقابلہ کرنے میں اس ماہ مبارک رمضان میں مقابلہ کرتے ہوئے اگر میں کمزور پڑ جاؤں، میں اس سے اپنا دفاع نہ کر پاؤں، تو خدایا تو وہاں پر میری مدد فرما، تو اس کے پنجے سے مجھے چھڑا لینا میرے پروردگار۔ بار الہ، اس مہینے کا دامن ہماری عبادتوں سے جو تیرے لیے بجا لائی گئی ہوں بھر دے۔ خدایا، اس مہینے کا دامن بھر دے ہمارے ان اعمال سے کہ جو ہم نے تیرے لیے بجا لائے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اعمال عبادات انسان اس مہینے میں بجا لاتے ہیں، لیکن تقاضا کیا ہے؟ جو خدا کے لیے بجا لائے ہو، وہ عمل کہ جو اللہ کے لیے کیا ہے، افطاری کرائی ہے، کسی کو سحری کرائی ہے، اپنا کوئی کسی کی مدد کی ہے، کسی کو راشن دیا ہے، اللہ کے لیے دیا ہے، تو اپنا خدا کے لیے خالصتاً جو تم نے خدا کے لیے ہم کام کریں، اس ماہ مبارک رمضان کو اپنے خالص اعمال، خالص عبادتوں کے ساتھ اس کے دامن کو بھرنا ہے، اور اس کے لمحات کو ہماری اطاعتوں سے سجا دے۔ ایک ایک لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرنا چاہیے، اور اس کے دنوں میں روزے رکھنے، اس کی راتوں میں نمازیں پڑھنے، تیرے حضور گڑ گڑانے، تیرے سامنے عجز و الحاح کرنے، اور تیرے رو برو ذلت و خاری کا مظاہرہ کرنے، ان سب میں ہماری مدد فرما، تاکہ اس ماہ مبارک کے دن ہمارے خلاف غفلت کی اور اس کی راتیں کوتاہی اور تقصیر کی گواہی نہ دیں۔ یہ ماہ مبارک رمضان گواہی دینے والا ہے، یہ اللہ کو بروز قیامت یہ گواہی دے گا، یہ کہے گا ہم سب کے بارے میں، ہم میں سے ہر اس کے بارے میں، خدایا اس نے میرے دنوں میں اس نے میرا لحاظ کیا، راتوں میں اس نے عبادت کی ہے، مناجات کی ہے، یہ گریہ کرتا رہے راتوں میں، یہ روزہ رکھا، اس نے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، دوسروں کو کھلانے کی جدوجہد کی، کوشش کی، یہ دن ایسی گواہیاں دے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کے دن ہماری غفلت کی اور راتیں ہماری کوتاہی اور تقصیر کی شکایت کر رہی ہوں، ایسا نہ ہو۔ اے اللہ، تمام مہینوں اور دنوں میں جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایسا ہی قرار دے، اور ہمیں ان بندوں میں شامل فرما جو فردوس سے بری کی زندگی کے لیے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وارث ہوں گے۔ یعنی یہاں پر آخر میں آ کے امام نے کہا، یہ جو کچھ ماہ رمضان میں کرنا ہے، جتنا بیان کیا امام نے، اس کو جاری رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ عید الفطر کے چاند کے ساتھ یہ ساری عبادتیں، یہ ساری ریاضتیں، یہ ساری پاکیزگی، ان سب کا خاتمہ ہو جائے اور یہ دروازہ اگلے رمضان تک کے لیے بند کر دیا جائے۔ نہیں، اس کو جاری رکھا جائے۔ کہاں تک جاری رکھا جائے؟ یہاں تک کہ ان بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کے لیے جو فردوس سے بری کے ہمیشہ ہمیشہ کے وارث ہوں گے، اور وہ کہ جو کچھ وہ خدا کی راہ میں دے سکتے ہیں دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دلوں کو یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ انہیں اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے، और उन लोगों में से जो नेकियों में जल्दी करते हैं, और वही तो लोग हैं जो भलाइयों में आगे निकल जाने वाले हैं। ए अल्लाह, यानी याद रखिएगा, जो बहुत कुछ करने के बाद भी उनका दिल मुतमईन नहीं होता, ऐसा नहीं होगा कि थोड़े से नेकियां करने के बाद मुतमईन हो जाए, जी अब तो हमने नेकियों के पहाड़ खड़े कर दिए। नहीं, वो अल्लाह वालों की खास निशानी क्या है, वो बहुत कुछ करने के बाद भी उनके दिल मुतमईन नहीं होते, उनके दिल को डर लगा रहता है, वो अल्लाह की मुलाकात का खौफ, इस माना में कि हिसाब देना है, और मुलाकात खुदा का शौक इस माना में कि खुदाए रहमत की बारगाह में हाजिर होना है, उनके दिलों में होता है। ए अल्लाह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर हर वक्त, हर घड़ी और हर हाल में इस कदर रहमत नाजिल फरमा जितनी तूने किसी पर नाजिल की हो, और उन सब रहमतों से दुगनी चुगनी और ऐसी रहमत के जिसे तेरे अलावा कोई शुमार ना कर सके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, वो रहमत नाजिल फरमा, बेशक तू जो चाहता है वही करने वाला है। आयत दुआ नंबर 44 जो हमने आज इसकी तिलावत की, अल्लाह के फजल व करम से माह मुबारक रमज़ान का आगाज़, आप जितने दोस्त हमारे साथ हैं या जो बाद में वीडियो देखेंगे, उन्होंने इसका आगाज़ इमाम की इस जलील कदर दुआ से किया है। तो इस दुआ के अंदर जो पैगाम था, इंशाल्लाह उसकी तरफ मुतवज्जे रहेंगे हम सब, और हम कोशिश करेंगे कि इस माह मुबारक को थोड़ा सा प्लान करके, एक कागज़ पेंसिल लेके ना, आज अगर आज या कल से दुआ करें, खुदा मैंने ये सामने तो किया है, अब तू मेरी मदद कर फरमा कि मैं अपनी इन खामियों को खुद से अलग कर सकूं, खूबियों को अपने अंदर दाखिल कर सकूं। बस इंशाअल्लाह खुदा यकीनन मददगार है, खुदा मेज़बान है इस महीने में, और मेज़बान मेहमान की ख्वाहिश का एहतराम करता है और उसकी ख्वाहिश को पूरा करता है।